राम। ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 अगस्त 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथाने में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण
सृष्टि की रचना बड़ी विलक्षण रीति से की है भगवान ने। इसमें बहुत भगवान की दया भरी हुई है, महान कृपा दया भरी है। अगर भगवान की दया की तरफ मनुष्य देखे तो महाराज तो भगवान का भक्त बन जाए। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताय भजन तजी भावन आना। राम जी के स्वभाव को जिसने जान लिया उसके भजन के बिना रहा नहीं जाता, हरदम भजन करता, मन खिंच जाएगा उसको। गीता ने भी कहा है कि यो मां मेरे मसुम बोलो जाना थी पुरुषो तो मेरे को पुरुषो तुम्हें जानता है सर्वित। संसार की सब विद्या जान लो तो भी वो सर्वित नहीं हो सकता, उसको जानना बाकी रहता है। तो सर्वित वो होता है जिसे जानना का बाकी नहीं रहा कुछ भी, वो सर्वित होता है, सब जान गया वो। तो परमात्मा को जान गया तो वो सर्वित हो गया। अब दुनिया की कितनी विद्याएं आप सब भाषाएं संपूर्ण लिपियां संपूर्ण कला कौशल सब तरह के गाना बजाना कविता आदि की सब बातें सीख ली, कुछ नहीं सीखा। एक राम बोल बोल सीखे और सीखे गए दूर में वो सीखना कुछ काम नहीं आया। और एक परमात्मा तत्व को समझ लिया तुम्हारा सर्वविद भजति माम सर्वभावे न भारत। तो सर्वविद की क्या पहचान है कि सर्वभावे न माम भजति, वो सब भाव से भगवान का भजन कर देता है। एक बड़े आश्चर्य की बात है, एक भगवान के जानने से सर्वविद कैसे हो गया, भगवत भी तो हो गया, इसका भगवान के जानने वाला हो गया, सर्वित कैसे हो गया। यो माम एवं असम मूड हो जाना थी, असम मूड है जाना थी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मेरे को जान ले। जिसे क्षरात अतीत हो, अक्षर से तो अतीत हो, और अक्षरा भी से उत्तम, अक्षर से मैं उत्तम हूं। इस वास में लोग में प्रसिद्ध में मैं पुरुष भारी जैसे ही का पुरुषोत्तम महेश्वर स्त्यंबक बना पर हरि जैसे ही का पुरुषोत्तम स्मृता, जैसे पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम कहलाता है। तो ऋषि पुरुषोत्तम है, वो तो जाना थी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जाना सस्तर तो। लेकिन लोगों के मन में जची हुई बात है कि रुपया हो जाए तो सब हो जाएगा, बस रुपये से हर एक चीज खरीद सकते हैं, हर एक ले सकते हैं। तो ये बहम है, बहम, हर एक चीज नहीं खरीदी जा सकती। रुपयों से कम मूल्य वाली रुपयों से चीज खरीदी जाएगी, रुपयों से अधिक मूल्य वाली वस्तु रुपयों से खरीदी नहीं जाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि जिस चीज को हम खरीदते हैं तो जिस वस्तु से खरीदे उससे कम मूल्य वाली मिलती है। जैसे कहा भी 100 रुपये में खड़ी मिलती हो तो 100 रुपयों से कम वाली मिलेगी, 100 रुपयों में थोड़ी से सब मिल वाली चीज नहीं मिलेगी। तो सबसे अधिक मूल्यवान परमात्मा है वो कोई मिल जाए ये बात नहीं है। सबसे मूल्यवान कौन है भाई? रामायण और गीता ये दो ग्रंथ बड़े विलक्षण है, बहुत बातें बताई हुई है। तो सुर नर मुनि सबकी हरी थी, सुर नर मुनि सब सबकी हरी थी, स्वार्थ ला कर सबकी थी। अपने कोई स्वार्थ को लेकर के ही प्रीति करते हैं, स्नेह करते हैं, किसी संबंध रखते हैं तो स्वार्थ को लेकर के। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने उप्रभु परमार्थ नाही। सुपने में परमार्थ नहीं, दूसरे के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए सब प्रेम करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना स्वार्थ करने वाले दो हैं, तुम तुम्हारा सेवक, एक तो भगवान एक भगवान के भक्त, ये भक्त दो ही है। बिना स्वार्थ करने वाले दुनिया से कुछ भी नहीं चाहते, कोई चीज नहीं चाहते, और हित करते हैं। बोले भगवान को हम क्या दे सकते हैं, भगवान ने कितना प्रबंध किया है। एक घर में पानी की कल लगा दो, टोटी लगा दो, तो उसका भी टैक्स इतने रुपये लगेगा। एक बत्ती लगा दो तो उसका भी पैसा लगेगा। भगवान ने कई नदियां लगा दी है, रात दिन बहती है, कोई कोड़ी भी तालाब नहीं है, और सूर्य और चंद्रमा जैसी बत्तियां लगा दी है, और कोई टैक्स नहीं। पंखा लगा दो तो उसमें खर्च आ जाता है, बेटे से आगे इतना आगे इतना, पर ठाकुर जी की तरफ से वायु चलता है, सबको श्वास मिलता है, जीवन मिलता है, पर कोई कोड़ी का भी टैक्स नहीं है, खुल रहा सबको। तुम्हारे को पंखा भी तभी लगाना पड़ता है जब आप दीवार खींच करके और भगवान के पंखे का बाध करते हो, आग लगा देते हो, तब तुम्हें पंखा लगाना पड़ता है, नहीं तो पंखा तो स्वतः चलता है। साहब भगवान की तरफ से आग मत लगाओ सीधा। ऐसे भगवान सबको ये करते हैं। देखो भगवान का बनाया हुआ जल है, वो ऐसा नहीं भी भगत होगा, भजन करेगा, आस्तिक होगा, ईश्वर को मानेगा, उसकी प्यास जल बुझाएगा और उनकी प्यास जल बुझाएगा नहीं, ऐसा कोई कायदा नहीं। भगवान का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, उसे भी वैसे की वैसे ही प्यास बुझाते हैं जैसे भगत से भगत को। अन्न वैसे ही उसकी भूख मिटाता है जैसे कोई जीवन मुक्त तत्व की भगवत प्रेमी की मिटाव, वैसे ही महान क्रूर कसाई दुष्ट सबका विनाश करने पर लगा है दुराचारों में, शास्त्र विरोधी काम करते उनकी भूख भी वैसे ही अन्न मिटाता है। भगवान अगर कायदा कर देते भाई धर्म से भगवान से विरुद्ध हो ऐसे को नहीं तो श्वास नहीं आ सकता, पवन खुला नहीं रहता, भाई श्वास उसी को लेना होगा जो भगवान का भजन करे, धर्मात्मा हो सदाचारी हो अच्छा हो उसको ही मिलेगा श्वास, ऐसा नहीं कैसे ही सबके लिए खुला। जीवन निर्वाह की चीजें पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच आधिकारिक दुनिया वालों को भी उनके जीवन के निर्वाह का प्रबंध किया है। एक संत के पास कोई गया तो महाराज का भी भगवान की सब दया है, सब दया से काम होते हैं। ऐसे बातें सुनाई तो उसने पूछ लिया कि महाराज ये सामने कुएं पर जो अहर चलता है इसमें बैल जुटे हुए हैं, बेचारे चक्कर काटते हैं दिन भर नहीं उम्र भर चलते हैं, इसमें दया क्या है भगवान की, क्या इसमें कृपा हुई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान कहते वे संत कहने लगे वे अनेक तरह के पाप किए, उन पापों के फल रूप से ये पशु दूनी मिली, तो पापों का फल भोगने के लिए मिली, तो वो फल भोगने के लिए भगवान ने बैल बनाया, तो उसको बल दिया है, शक्ति दी है, इस शक्ति से तुम कर्ज उतार दो, ताकत दी भगवान ने, तो इतना चल करके वो कर्जा उतार रहा है, तो कर्जा किया इसमें कोई उसने पुण्य नहीं किया है, परंतु भगवान ने किया कि तुम कर्जा उतार लो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा, तो पाप दूर करने के लिए भगवान ने ऐसे ऐसे ढंग बनाए, बीमारी बनाई है, बुखार बनाया है, तरह तरह की आफत है जिससे तुम्हारा कर्ज उतर जाओ स्वतः और जीवन निर्वाह हो जाए, शुद्ध निर्मल हो जाओ। सज्जनो क्या बताओ, ऐसी विलक्षण बातें हैं, भगत भगत आती है बात समझ में, ऐसी बातें आती है गीता से रामायण से, कल्याण स्वतः हो जाए, स्वतः स्वाभाविक कल्याण हो जाए। गीता की टीका लिखने लगे, तीसरे अध्याय का विवेचन करते हुए एक बात समझ में आई, हमने पुस्तक में बहुत पढ़ी पढ़ाई भी ऐसे ही की है, बहुत का अर्थ कि मेरी दृष्टि से कई पुस्तक पढ़ी, ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, ज्यादा जानता नहीं हूं मैं, तो उसमें ऐसी बातें हैं, ऐसी विलक्षण प्रश्न गीता में रामायण की बातें मिलती है, तो गीता के अध्ययन से उसके ऊपर लिखने से लिखवाने से समझ में आई कि मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए अपने कल्याण के लिए कुछ भी काम न करे, केवल अपनी लाइन पर ठीक चलता रहे, जिस वर्ण में जिस आश्रम में जहाँ जिस देश में जिस वेश में जिस संप्रदाय में जहाँ है वहाँ ही अन्याय न करे, न्याय में अपने ठीक न्याय मार्ग में चलता रहे तो कल्याण हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये गीता के लिखते समय समझ में आई, देवान भावयता ने न ते देवा भावयंत हुआ परस्परम भावयंत श्रेय परम भाव से था, अब एक एक की वृद्धि करते उसे परम श्री को प्राप्त, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। अब परम कल्याण का भगवान का भजन किया, कीर्तन किया, जप किया, तत्व का विचार किया, उपासना करी, क्या किया, परस्पर भाव यंत्र, अपने से दूसरों का हित करना, अपने द्वारा सबका भला चाहना, भला करना। भगवान कहते हैं ते प्राप्तवंती माम एवं सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित, अहित किसी का न हो, किसी का ही अपकार न हो, डरते रहे जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ऐसे अगर जीवन बना शुद्ध बनाया जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मामे प्राप्त मंत्री मामे मामे मेरे को ही प्राप्त हो जाते, सर्वभूत हिते रहता, वो हिते रहता कब शुरू होता है, जो अपनी तरफ से अहित नहीं करता, किसी भी प्राणी का अहित नहीं करता, उसका नुकसान नहीं करता, तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। तो मामे सगुण की प्राप्ति हो जाए, निर्गुण की लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम क्षीर कर्म सास, वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। छंदात्मान सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रत हो जाए तो भी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान देना हित रता का रहता, हित में उनकी प्रीति है, सब प्राणियों का हित क्या करे, एक मनुष्य संसार का हित कर रहे ये बात दूरी, एक का हित करना भी एक से मुश्किल है, संसार मात्र मिल करके भी एक का हित नहीं कर सकते, तो एक आदमी संसार का हित कैसे कर दे, सेवा कैसे कर दे। तो भगवान ने कहा हिते रता, उसकी प्रीति संसार के हित में हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हृदय का भाव हो सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सदा मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसा भाव रहे। हित कैसे हो, शब्द का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब तत्व के जीवन मुक्त कैसे हो जाए, केवल ये भाव भी सर तो उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। केवल इस भाव से सर्वभूत हिते रता रहता, वो रति प्रीति, प्रीति में बड़ा भारी एक बल है। अब छोटी अवस्था में हमने सुंदर विलास पढ़ा था, उसमें आया था एक रति में न पाव रति को, हम समझे नहीं, एक रति बिन पाव रति हो, एक रति नहीं है तो पाव रति है, बहुत तुच्छ है, कुछ काम का नहीं, एक सिरमी है ना उसको रति कहते हैं, एक रति तोला, तो एक रति बिन पाव रति हो, तो वह रति नाम सिरमी का नहीं है, एक प्रीति हो जाए भगवान में, एक तत्व में प्रीति हो जाए, निर्गुण में सगुण में किसी में ही, दुनिया के हित में भी रति हो जाए, रति प्रीति हो जाए, सबका हित हो, ये एक प्रीति हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, और एक प्रीति नहीं तो पाव रति का कोई मूल्य नहीं, उसका निकम्मा कोई काम करना, तो केवल रति प्रीति। अब उन्हें क्या कर दिया बताओ, सबके हित का ही भाव, सबके हित का, सबके कल्याण का, सबके उद्धार का भाव, रात दिन ही जिसके मन में बसता है। पर हित बस दिन के मन माहे, दिन का जग दुर्लभ कुछ नहीं। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। सज्जनों हिंग लगेना फटकड़ी रंग चका चका है, कैसी बढ़िया बात। खर्चा कुछ होने मियाज हो जाए, केवल आपका भाव ये हो जाए कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका भला हो, सभी सुखी रहे, सब आनंदित रहे, ऐसा केवल भाव। एक धनी आदमी थे बीमार, तो वहां जाने का काम पड़ा। तो मैंने कहा तुम भगवान को याद रखो, भजन करो। तो कई बातें बताई तो मैंने बताया, देखो तुम ये पढ़े रहोगे मैं भगवान के चरणों में पढ़ाऊंगा, अरे भगवान की मेरे पर कृपा दृष्टि है, तुम्हारा जितना उत्साह है वो बोले ये तो भजन मैं भी कर सकता हूँ, बीमार पड़ा कोई शक्ति नहीं है ये तो मैं भी, वो भजन ये कम नहीं है, बड़ा विचित्र भजन है। हे नाथ आपको चरणों में पढ़ाऊंगा। बोलो क्या करना पड़ा, भजन जितनी सुगम चीज कोई नहीं है, इतना सरल रस्ता है। तो उनके बड़ा उत्साह देखा मैंने, याद आ गया, कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, जो बीमार पड़ा हूँ, करवट लेने की भी शक्ति नहीं, उठने की बैठने की शक्ति नहीं, तो इनमें इस शक्ति में जरूरत नहीं है। शक्ति जिसको जितनी है उससे करो आप, तो वो दिए उतना ही करना है। करोड़पति जितना दान पुण्य करे, एक एक दो चार रुपयों वाला नहीं रुपयों वाला वो किसी के काम कर दे, अरे उसी पास कुछ नहीं रास्ता ही बता दे, तो करोड़ रुपया धन करने पुण्य करने वाले से कम नहीं होगा। सत्य सारू दत्त बांटी ये नापो कह तो नरा, निपट न करो न दीजिए उन तो देख घरा। सत्य शक्ति सर लोग वेद महाराज फूल सद पांखड़ी है, फूल सद पांखड़ी जैसा फूल जैसी पांखड़ी, तो सत्य सारू शक्ति के अनुसार अपनी नियत केवल हित करने की हो, वो नियत कल्याण करती है, वस्तु कल्याण नहीं करती। लोगों के बहम है कि भाई ज्यादा धनी हो बहुत बड़ा काम कर सकता है, वो धनी बहुत काम कर सकता है और गरीब काम कम नहीं कर सकता, बड़ा काम कर सकता है। एक कथा मैंने सुनी है कि एक गांव में एक आदमी रहता था, बड़ा ही नरेंद्री, बूढ़ा हो गया, तो क्या करता कि जंगल में जाता, वहां से सूखी लकड़ियां बटोर करके ले आता और गांव में बिक्री कर देता, उनसे अपने जो कुछ मिलता उनसे रोटी कपड़े का निर्वाह करता। बूढ़ा हो गया तो वो एक दिन लकड़ी ले आ रहा था, उसमें संयोग क्या बना, एक शहर के पास में गांव में एक आदमी रहता था, वो आदमी संतों के यहाँ बजाता और सत्संग करता था, बड़े शास्त्र पढ़ता था, मेहनत करता था, नाम जप करता था, कीर्तन करता था, अच्छे साधनों में लगा हुआ था, परंतु उसको शांति नहीं मिल रही थी। कहते मैं करता हूँ सब कुछ परंतु शांति की प्राप्ति नहीं हो गई है, क्या करूं। तो संतान का भाई उपकार करो, किसी का उपकार करो, हित करो, सेवा करो, सेवा करने से मेवा मिलता है, शांति मिलती है, दूसरों को शांति दो तुम्हें शांति मिलेगी, सेवा करो। तो बेचारा करता था सेवा, सदा कुछ दान पुण्य करता था, काम धंधा क्या था, एक शहर के पास में गांव में रहता था, वहां से खूमचा अपना बनाया, उसमें आलू की और चनों की बहुत चीजें बनी, आलू की चनों की चीजें बहुत बनती कई तरह की, तो वो सुसवा चना है, समूझा हुआ चना है, नमकीन चना है, उबाला हुआ चना है, चनों की दाल है, दालिया है, कई तरह की चीजें चनों की बनी हुई, ऐसे आलू की कई तरह की चीजें बनी हुई, बड़ी सुंदर अच्छी तरह से बढ़िया बना था और खूमसे में रख करके हो जाता। उनको देखा होगा, उनके एक पानी की झाड़ी, पानी का लोटा थे, पानी की हंडिया एक हांडी रहती है, वो पानी की हांडी भी उसमें थी, तो वो घूमसा लेकर के और अपने घर से सजा कर जाता शहर में, जब बिक्री हो जाए कुछ पैसे मिल जाए तो जीविका चले, ऐसे चलता था, सुबह शाम सत्संग करता था, संतों में भाव भक्ति रखता और भजन स्मरण करता, जप और कीर्तन करता, बातें बहुत जानते बोलते थे, शांति नहीं मिल रही है, ये प्रश्न महाराज के सामने उसको होता था। तो एक दिन वो अपना खूमचा लिए हुए शरीर के ऊपर, वो बड़ा सारा इसमें कई तरह की चीजें बनी हुई, वो लेकर जा रहा था, तो वो जो बूढ़ा लकड़हारा वो जंगल से बोझा लेकर के, लकड़ियां लेकर के वो भी शहर में जा रहा था, तो वो खूमसे वाला तो पीछे था, वो आगाड़ी चल रहा था, काफी दूर पर चल रहा था, तो एक वृक्ष की छाया में गया, तो वहां उसने बोझा नीचा रखा, खुद पड़ गया, बूढ़ा था, थका हुआ था, दोपहर की घाम थी, तप रहा था, तावड़ा तप रहा था, जोर से गिर पड़ा, तो वो जल्दी जल्दी गए, बोले क्या हुआ, कैसे क्या हो गया इसको, क्या हो गया, तो जाकर देखा तो मूर्छा हो गई, उसको भूखा था और घाव में लगी प्यास जोर से, बिना पानी के घबरा रहा था, ऊपर बोझा पसीना आ रहा है, घाम तप रहा है, अभी तक अपना घर दूर शहर दूर है, तो उसने विचार किया कि यहाँ बोझा रख करके और इस वृक्ष की छाया में कुछ आराम कर लूं, ऐसे विचार से वो रखने लगा तो उसके हाथ से गिर गया, इतनी शक्ति नहीं रही कि ठीक लकड़ियों को रख दे और फिर आराम से सो जाए, ऐसे गिर गया, मूर्छा हो गई, तो ये पहुंचा विचार करके अपने जल था, वो उसके मुख में टप गया, होश हो गया, कपड़े से हवा करी, बोला भाई क्या है, फिर वो कहे तो उसको पानी पिला दिया, पानी पीने के बाद मिले भाई चना खा ले, उबला हुआ मसालेदार तलिया चना था, फिर दिया, तो भूखे को तो मतलब सूखा चना मिल जाए तो भी आनंद आता है, वो नमकीन बढ़िया चना था, भी खाए और कह रहे पानी पी ले, फिर पानी पिला दिया, ठीक है, हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है, बोल भाई और क्या चाहिए, कैसे ये लकड़ी और मेरे सिर पर रख दो, ये लकड़ियां रख दो जिससे मैं ठीक आराम से चला जाऊं, अब शक्ति आ गई है, अन्न पहुंच गया, जल पहुंच गया पेट में, शक्ति आ गई, तो उसने लकड़ियां उठा दी और वो चला शहर में गया, तो उसकी बड़ी प्रसन्नता हुई मन में, उस खूमचे वाले के बड़ी प्रसन्नता हुई कि भी आज किसी की सेवा बन गई मेरे से, और फिर अपना नित्य कर्म करने के लिए बैठा शाम को, तो मन लग गया एकदम, बड़ी शांति मिली, सत्संग में गया दूसरे दिन सुबह जा रहे, कहे बाबा जी रात तो बड़ा आनंद रहा, कभी कोई दान पुण्य किया होगा उपकार किया। दान पुण्य किया था महाराज, आठ आना रुपया इतना रोजाना पैदा कर लेता हूँ और उतना से मेरा खर्च हो जाता, घर का काम धंधा हो जाता है, निर्वाह हो जाता है। पुराने जमाने में सस्ता जमाना था, ऐसे काम चल जाता है मेरा। कोई दान पुण्य धन पुण्य मेरे को मेरे पास है ही नहीं था, कहाँ से करूँ मैं, क्या करूँ। तो मैं कुछ न कुछ किया होगा तो उसके मन में नहीं, मैंने कुछ दान किया है, पुण्य किया है, कोई बड़ा भारी काम किया है, यज्ञ किया है। फिर याद आई कि मन, हाँ एक लकड़हारे को मैंने थोड़ा सा अन्न खिलाया, थोड़ा पानी खिलाया, कि तो उसी का ही फल है, ये जो शांति मिली है उसी का फल है। तो ये बात कहावत में एक मारवाड़ी आती है कि सलबल जी खेती बेड़ापुर को दान, ये बेड़ापुर का दान बड़ा विचित्र होता है, मौके पर दे दिया जाए बड़ा विचित्र असर होता है उसका। जो अटकल लगाते हैं ना वो उतना काम नहीं कर सकते, ऐसा बसा और ऐसे महात्मा मिले, ऐसे संत मिले, उनकी सेवा करूं, बढ़िया ब्राह्मण मिले। अब बढ़िया घटिया कैसे मिला है? बढ़िया खोजने वालों को बढ़िया नहीं मिलते, अमूल्य चीज होती है बिना मूल्य मिलती है, मूल्य से चीज मिलती हो तो मूल्य से कमजोर मिलती है। तो ऐसा कोई पुण्य होता है वो कोई इस भाग से विलक्षण चीज हो जाता है, तो बड़ी उसको शांति मिली। तो ये संसार की रचना मेरे मन में आई कि विचित्र ढंग से है, मनुष्य जिस रीति से अपना स्वार्थ करता है इसी रीति से ये अपना पतन कर रहा है, इसी से ये प्रणाली दिखती है, मेरे धन हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरा आदर हो जाए, इसी रीति से ये अपना पतन कर रहा है, इसी से ये प्रणाली दिखती है, मेरे धन हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरा आदर हो जाए, मेरा सत्कार हो जाए, मेरी महिमा हो जाए, मेरे को आराम मिल जाए, उसको नहीं मिलता है। और यही हो जाए, दूसरों का आदर हो जाए, दूसरों का मान मिले, बड़ों का, जो श्रेष्ठ पुरुषों का, वृद्धों का आदर हो, सम्मान हो, उनको सुख मिले, आराम मिले, उनकी बड़ाई हो, ऐसा जिसके भाव होता है संपूर्ण प्राणियों को सुख मिले, सर्वभूत हिते रता, केवल विश्व की भावना दूसरों के हित करके हो जाए, तो दूसरों का हित करने से अपना हित होता है और अपने हित करने से अहित होता है। अपने हित के लिए ही तो लोग ठगाई करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, व्यापार में भी कपट करते हैं, हर एक तरह से मजदूर तो चाहता है काम तो कम करें, दाम ज्यादा लें, और काम करवाने चाहते हैं कि काम तो ज्यादा करवावे पैसा कम दे, तो दोनों में लड़ाई होती है और उनका भाव बदल जाए। काम करने वाला भाव बदल जाए, भाई अपने पैसे जितने मिलते हैं वो हम खरे पैसे बनावें, तो खरे पैसों का मुझे बहुत बड़ा दाम होता है, वो छोटे छोटे से दिखते हैं परंतु उसका पुण्य बहुत बड़ा होता है, क्योंकि खरी कमाई का होता है ना पसीने की कमाई को। तो काम करने वाले को समझेगी हमारे को जितना पैसा मिले उनसे सवाया डेढ़ा इसके घर में काम पहुंच जाए, जिससे हमारा पैसा पक्का खड़ा हो जाए। आज भी जो छिपा कर धन कहते उसको दो नंबर का कहते, तो दो नंबर का नहीं भाई, वो सामान नंबर का नहीं, एक नंबर का। अपना काम धंधा ज्यादा और पैसा उड़ा खर्च हो वो हमारा पैसा बड़ा मूल्यवान होता है, बड़ी उसकी महिमा है। और उनको कैसे सुख पहुंचे, काम धंधा तो ले हम परंतु उनके घर में शांति कैसे पहुंचे। मैंने ऐसी बात देखी है, वैसी जाति में एक जगह देखी बात, जो वे काम करते थे वो काम करने वाला बूढ़ा हो गया, और उनके पैदा नहीं थे तो उनका महीना वैसे ही देते हैं। अब घर बैठे महीना देते हैं, घर बैठे चीज देते हैं। भाई इसने उम्र थी उस तक काम किया, अब इनकी शक्ति नहीं है तो निर्वाह तो होना ही चाहिए। ऐसे होते हैं, कोई कोई देखा है। आजकल इतना स्वार्थ है, इतनी ये लुलुपता बढ़ गई। बैल बेचारा उम्र भर बैठा है और बूढ़ा हो जाए तब कसाईयों को बेच देता है, बूढ़े में काट करके भी कर देते हैं। बहुत बड़ी कृतज्ञता है, कितना उपकार किया जन्म भर बेचारे ने, खेती करी, बोझा ढोया, आपका काम किया उसने, और बूढ़े हो जाए तब बिक्री कर दो, पैसा बच जाए, कसाई काट दे उसको। अरे भाई अपने घर पर ही मर जाए तो क्या किया जाए, मर जा दो, मर गया भाई, बूढ़े बैल की सेवा करो। बूढ़े माहित हो जाए तो क्या कसाई को बिक्री करते हैं, गाय बूढ़ी हुई तो बेच दो कसाई को। बहुत बड़ी भारी हत्या है, निर्दयता है, बहुत खराब खराब काम है। परंतु पैसे का लोभ, कितना काम तो कर दिया, अब बूढ़ा भाई काम तो करता नहीं, बिक्री कर दो रुपया मिट जाएगा आपने, ऐसे आस्तरी की बात है। तो इसका नतीजा चाहे धन आपके पास हो जाए पर शांति नहीं मिलेगी, भीतर में कलेश रहेगा, राग द्वेष लड़ाई दंगा फिसाद ऐसा होता रहेगा, रोग होता रहेगा, मुकदमे लग जाएंगे, वैद्य डॉक्टर और वकील ये रुपये खाएंगे और आपको शांति नहीं मिलेगी। सब सूचने वाले आपको आ गए, क्योंकि पैसा इकट्ठा किया, धर्म इकट्ठा नहीं किया। धर्म संचुनिया, धर्म इकट्ठा करना चाहिए, पापों का नाश करना चाहिए। उसमें बताया है कि जैसे ये दीमक लगती है ना उदय, वो कीड़ी जितनी होती छोटी सी, परंतु आपने देखा होगा जंगल में वृक्षों को काठ को बड़े बड़े काठों को मरा रेती बना देती है और टीले से बढ़ जाते हैं ऐसे ऐसे पर्वत की तरह। मुंह में कितना गावे, रेती थोड़ी सी गाती है पर वो करते करते इतना संग्रह कर देते हैं। बड़े बड़े वृक्ष होते हैं सूख जाते हैं, उनको ऊपर छाल छाल के बीच में सब मिट्टी भरी हुई खा जाते, मिट्टी बना देते हैं। छोटी सी एक है तो वो करते करते संग्रह कितना कर लेते हैं। तो इस तरह से अंधने से एक सेम दृष्टवा वल्मीकि का भी पुत्री का ऐसा है शास्त्रों में, जैसे माताएं अपने बालकों के लिए काजल बनाती, काजल काला काजल, घी का दीवा करके वो तवा ऊपर रख करके श्रृंगार देवी तवे के लग जाए काल इकट्ठा कर लेती है, गद्या में कर लेती है। पहले कुंपला होता था, कुंपला काठ का, उसको भर लेती है। वो कितना करे उसे आवरी भर के थोड़ा आंध रहे, कुंपला खाली हो जाए, एक अंगुली कितना करेगा काल, आंख में कितना काजल हो, वो करते करते कुंपला खाली हो जाता है, वो डीलिया खाली हो जाती है, काजल खत्म हो जाता है। तो खर्च करने से ये काला पाप है उसको नाश करते करते सब सीख जाएगा, और धर्म को अगर इकट्ठा करे तो थोड़ा थोड़ा वो उदय की तरह करते हुए बड़ा ढेर हो जाएगा। रोज ना करते, पुसी पुसी भर पीसते केमुन आटा हुए, टोपे टोपे सर भरे हरिया को दुसो, ये पीसना पीसने वाला की माताएं बहना वो इतना सा डाले, इतना सा थोड़ा सा डाल दिया कृषि चलाई, थोड़ा डाल दिया गति चलाई, वो थोड़ा सा इतना सा 12 महीना में कोठी खाली कर दी, थोड़ा सा पीस दे तो पुसी पुसी भर पीसते केमुन आटा हो, कई मनों का आटा हो जाता है। और टोपे टोपे बूंदा बूंदा बरसती होने पर सरोवर भर जाता है और पूर्ति एक बूंद आती है, पर वो बूंद होती होती सब बूंदे इकट्ठी होती सरोवर भर जाता है। तो इस तरह से अगर सदा दान पुण्य करे, सदा ही कुछ न कुछ घर से निकले, अवंध्यम दिव संकुलियात दाना अध्ययन करो, भी दान है पुण्य अध्ययन है, इसके लिए दिन अवंध्य करे, कोई बांस दिन चला जाए, खाली दिन न चला जाए, जिसने पुण्य नहीं किया, दान नहीं किया, जप नहीं किया, भजन पाठ नहीं किया, अमर नीति का पाठ नहीं किया, तो दिन वंज दिन है, बांझ दिन है, उसे कोई पैदा नहीं हुआ। तो ऐसा कोई भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए कि जिसने कोई उपकार न करे, किसी का हित न करे, किसी को दान न दे, किसी को रोटी न दे, चिड़िया को कबूतरों को अन्न भी डाले, कीड़ियों को भी अन्न डाले, किसी तरह से नहीं। आज मारने की चीज तो चली है, सब जंतुओं को मार दो, ये मारते मारते इतना मार दिया है, पहले दीपक जलाते थे तो बहुत जंतु इकट्ठे होते थे, आज रात्रि में जंतु इतने इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि ऐसी जहरीली गैस पैदा करके फैलाई है जिससे सब जंतु मर जाए। गंगा जी के किनारे छोटे छोटे जंतु जल में रहने वाले, उड़ने वाले, किनारे रहने वाले काले काले दो तीन तरह के जंतु मैंने देखे, बहुत रहते थे, आज वो जंतु नहीं है, जंगलों में जंतु नहीं है, वो ऐसा गैस फैलाया है कि जिस हवा से वे जंतु सब मर जाए। गायों को भी मार दो, भैंसों को भी मार दो, कुत्तों को भी मार दो, खरगोश को मार दो, सियाल को भी मार दो, सांपों को भी मार दो, उनकी चमड़ी ले लो सब। हिंदुस्तान सबसे आगे है, विदेशों में मैंने सुना है कि विदेशों में चमड़ा जितना हिंदुस्तान ने दिया है दुनिया को, इतना किसी देश ने नहीं दिया, ऐसी प्रसिद्धि हो गई, क्योंकि हर एक चीज को मारकर चमड़ा निकालो और मांस भेजते हैं, छोटे छोटे बसरा बसरी होता है, इनका मांस बड़ा कीमती होता है, 300 रुपया किलो ऐसा ऐसा मांस जाता है विदेशों में, मांस मुसलमानों के देशों में, उनसे रुपये पैदा करते हैं। अभी पीछे युद्ध हुआ, उस युद्ध में देश जाति ने मांस का ठेका लिया जाने के लिए, मिलिट्री को मांस लेने के लिए काम लिया, व्यापार है, व्यापार के नाम से चाहे कोई काम करा लो और दवाई के नाम से चाहे सो चीज खिला दो, दवाई है बस, नाम दवाई धर दो उसका, फिर चाहे सो खिलाओ, मरीजा पिला दो, चाहे मांस की बड़ी हुई चीजें, गाय के कले जैसे, घोड़े के कले जैसे, ऊंट की हड्डियों से बनी हुई चीजें ऐसी डॉक्टरों की, वो खिला दो उनको नहीं, पर नाम से दवाई धर दो, पर ऐसे चाहे मांस का व्यापार करो, हड्डी का करो, सींगों का करो, लाख का करो, चाहे नील का करो, कैसे ही बाजार कर दो, नाम उसका व्यापार हो जाए फिर कोई परवाह नहीं, पैसा पहले व्यापार है, इसको सोचते नहीं व्यापार की, कितना स्मृतियों में विशेषता लिखी है, ऐसा नीचा व्यापार नहीं करना चाहिए। एक बूढ़ी माँ की बात सुनी, बूढ़ी माँ ने कहा बेटा अनाज का व्यापार मत करना, कभी धान का व्यापार मत करना। बात पूछी भी क्या बात है इसमें, कि व्यापार करता है उसकी ये चीज है कि ये चीज महंगी हो जाए, जैसे महंगी हो जाए तो पैसा ज्यादा बटे, तो लोगों में अन्न मिलता है वो भावना हो जाएगी कि ये महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, तो भावना भावना में बड़ा भारी पाप हो जाएगा, इसको अन्न का व्यापार मत करना बेटा, अन्न का नहीं करना। कितनी बढ़िया चीज मैंने सुनी कि माता की कितनी दृष्टि है, ये व्यापार मत करना, चिंतन हो जाएगा ये अन्न का व्यापार कैसे महंगा हो, कैसे महंगा हो, किस दाम तो जब ही बटेगा जब महंगा हो जाए, तो ये भावना है दूसरों के अहित की बहुत बड़ी खराब। तो व्यापार में व्यापार केवल नहीं है, इनमें भावना क्या है, इन क्या चीज का व्यापार करते होगा, तब वो तम्बाकू है, अफीम है, बड़ी नशीली चीजें हैं वे करते हैं, खाने में नशीली चीजें आती है महाराज, वो क्या कहते हैं आजकल ये मसाला चला है जो वो उनको खाया करते हैं, क्या नाम याद है मेरा, नाम याद नहीं है, पान का मसाला,
पान
पराग, उसमें ऐसी नशीली मर्जा की चीजें भर देते हैं जिससे नशा आ जाए तो लोगों को हो जाए, जिससे हमारा व्यापार चले, रोग अनेक पैदा होते हैं, नशीली चीजें होती है, पर हमारे पैसा पैदा हो जाए, दुनिया भर ही मरो कोई परवाह नहीं है, ऐसी विचार है। वो व्यसन लगते था फिर छूटता नहीं, क्यों नशीली चीजें नशा आता है, नसीब व्यसन ही सुन सो बात रहे और जावे राजिया, वो रह नहीं सकता, व्यसन हो जाएगा और वो ऐसे व्यसन बन जाए, ऐसी चीज उनको मिल जाए, चीजें इतनी कमजोर देना जो वो टूट जाए नष्ट हो जाए, जिससे हमारी चीजें और बिके अधिक बिके, ये भावना ऐसी जम गई भीतर घर कर गई है कलयुग महाराज की कृपा से, धन कलयुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई, तो भाव हो गया कि हमारे पैसा पैदा हो जाए, लोगों के इतना ही नुकसान हो, सज्जनों उल्टा दिखता है, मैंने पहले कहा अब भी कहता हूँ, लोगों का हित करने में अपना हित होता है और लोगों का अहित करने से अपना अहित होता है, कोई किसी की जलावे पूरी उसका जलता है पूरा, किसी की तोड़े धुरी उसका तोड़ता है धुरा, कोई किसी की चीते बुरी उसका होता है बुरा, कल युग ने ये कर युग है, इस हाथ दे इस हाथ दे, क्या खूब सौदा नगद है, ऐसा सौदा है ये, अब क्या बतावे, हमारे तो पुरानी बात देखी हुई है, आजकल की सोचते हैं देखते भी है, भगत बल हल चलाते थे तो हल चलाते थे इस हाथ में तो रास रहती बैलों की रास और पिरानी ये हाथ में रहती लकड़ी वो, और वे ज्यादा चलाने वाले महाराष्ट्र आदि में देखा है जो उनके अगाड़ी आर रहती छोटा सा खीला रहता है, तो यूं भी मारते हैं यूं खीला लगाते हैं, कोई कुछ इतना लंबा निकालते हैं जैसे बैलों को चलाते हैं आपस में, तो खीला यूं से वो देते हैं ऐसे जीप निकल जाती है पैर बैल की, वो खिल चुको देते पीछे चलाने के लिए, तो दया नहीं आती तो लकड़ी से मारते हैं, खिला चुबाते चलाते हैं, और हल चलाते हैं तो क्या होता है कि वो बीज का बीज या यहाँ पर बांध लेते हैं उसमें हाथ में भर करके इस लेते हैं, राय को दाना डालते चले जाते हैं, वो बीज बीज दे देते हैं और मारते हैं तो फिर वो चलाते हैं, जब सिट्टा आता है तो एक एक दाने का महाराज कितना कितना कई की सिट्टा, आजकल तो एक तुल एक सिट्टा एक बाजी एक सिट्टा, इस धान का प्रचार हो रहा है, एक एक दाने के बंटने वाली बाजरी की घाट होती है जिसकी सौ सौ सिट्टा एक के ऐसी होती है, वो बाजरी बंद कर दी, अब एक बाजी लंबा सिट्टा होता है एक सिट्टा, वो बाजरी शुरू करो, प्रेरणा कर रहे हैं दे रहे हैं, मेरे तो जहाँ काम पड़ा गांव में करे, तुम बीज नष्ट मत करो, पहली बाजरी का बीज है वो ठीक रखो आप, मैंने वो बाजरा बनते ऐसा जिसमें ऐसा करते, परंतु कितना ही करे जिस हाथ से एक एक दाना दिया उस हाथ में हजारों दाने का सिट्टा आता है, और जिस हाथ में आर रखे उसमें जाती रहती है काटने की, तो लोहा भी बढ़ गया धान भी बढ़ गया, हाथ में उसी में जिस हाथ से दान रहे उसी को दाना मिले, और जिस हाथ में वो रखी आज छोटी सी वो दाती बन गई मतलब मोटी, तो इस लोक में भी इतनी बन जाती है खेती, यहाँ पुण्य दान करोगे पाप करोगे तो कितना बढ़ेगा, कल मैंने कहा कि ये मनुष्य शरीर इलिंग शरीरों कौन से क्षेत्रम, ये खेत है बढ़िया बढ़िया उपजाऊ है, वो बढ़िया उपजाऊ जमीन होती है उसमें कांटों के बीज पड़ते हैं तो बुरुट भी उनमें बड़ा बड़ा होता है बढ़िया, बमूल होते वो भी लंबे लंबे कांटों वाला बढ़िया होता है, पुराना होता तो बढ़िया होता है, क्यों बीज दे बीज को ऊपर दे देती है पृथ्वी, वो तो जैसा बीज उसको शक्ति दे देती है पृथ्वी और जल और वायु और आकाश में पवन और रूप का आतप, ये सब खेती को मदद करके जैसा बीज है उसके अनुसार उनकी हाँ हाँ मिला देते हैं। तो इसे पाप करोगे तो पाप भी बहुत बड़ा पड़ेगा। कई कहा था कि लख 84 भुगतते बीत जाते जुग चार, चार जुग बीत जाते हैं, लख 84 का अंत नहीं होता है। इतनी बड़ी भाई हानि होती है मनुष्य जन्म के किए हुए पापों से। वे पाप और पुण्य यहाँ होते हैं, भोगे जाते हैं 84 लाख जूनी में, देवताओं के यहाँ पर, नरकों के यहाँ, पाप का फल नरक और 84 लाख जूनी पुण्यों का फल स्वर्ग आदि ऊंची लोकों में ऐसे भोगा जाता है। तो वो पाप करते हुए डरते नहीं, विचार नहीं करते हैं कि हमने रुपया ले लो, ये रुपया तो रह जाएगा यहाँ और उसके किए हुए पाप चलेंगे साथ में। क्योंकि ये कहाँ पाप भरे हैं मैंने सुनाया था, उस एक ठाकुर की बात सुनाई कि उनको कहा तुम हमारे शहर में नहीं रह सकते, सब चीजें तो उसने बिक्री कर रत्न बना भर लिए कि तुम्हारी हवेली कार का हमारे पॉकेट में है सब, कि तुम्हारी मोटरें के पॉकेट में है, तुम्हारे गांव के पॉकेट में है, तो साथ में चलने पॉकेट में भर लो। तो साथ में कौन सा पाप चलेगा? मन चलेगा, बुद्धि चलेगी, आपके भाव चलेंगे। उस भाव में हत्या, हिंसा, पर का अपकार, दूसरे का नुकसान, ऐसा भीतर भर लिया, राम नाम सत बोलेगी, यहाँ तो कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं, पाप में कौड़ी एक बाकी रहेगी नहीं, वो सब की सब साथ चलेगी। थोड़ा भी पाकि यहाँ रह जाए ये बात नहीं होगी, वो भीतर के पाकिटों में भरेगा, जो आपके साथ में जाएगा पाकिट उसमें भरा गया। तो साथ में चलने की चीज बढ़िया लो, एक घटिया क्यों लेते हो? जगह महान नुकसान हुए परंतु आज करते क्या है? बाहर से मकान बहुत बढ़िया सजाते हैं, ऐसे बाहर से हमारी ठीक इज्जत रहे, प्रतिष्ठा रहे, अच्छा रहे, शरीर रहे, और भीतर झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, ये भीतर में भर लेते हैं। भीतर का बैठने के मकान है माँ, शरीर बाहर करके सब जितना बारह बारह में रास्ता है उनको साफ करके, कुत्तों का मैला पड़ा हुआ उनमें से वो मैला इकट्ठा करके खास बैठने की बैठक मकान में सब भर लिया। बाहर से बहुत सुंदर किया था, किसे वो कितना सफाई है, नजीक नजीक गलियां सफा कर दी, बहुत साफ कर दी था, और बैठने के मकान में महाराज नाक फटे जैसी दुर्गंधी आ रही है। ऐसे खास रहने के घर में क्या कर लिया आपने? कितना वहाँ सजाया है बढ़िया, कितनी चीजें इकट्ठी करी है, राम राम राम, चेत नहीं होता है। मनुष्य के बीच में भगवान ने बुद्धि दी है, तो बुद्धि का ये परिणाम कि नाश करना किस तरह से, औरों का नाश करना, हमारे को धन मिल जाए, हाय धन हाय धन हाय धन। ये धन नहीं मिलता है बिना भाग्य के, पाप करत निशिवास जाई, नहीं कटिपट नहीं पेट आघाई, लज्जा निवारण के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता, पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं मिलता, और पाप करत निशिवास रात दिन पाप में जाता है। तो सज्जनों पाप से कोई धन मिल जाए ये नहीं है। पुराने पुण्यों के कारण से अच्छा कुल मिल गया, धन मिल गया, शीर्षों की मिल गई, अब जो पाप कर रहे हैं तब तक मेरी माप है, अवगुण करो हजार, नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माप है अवगुण करो हजार। पूर्व के किए हुए पुण्यों के कारण से अच्छा घर अच्छा मकान मिल गया है, और अब अगर पाप करते हो तो पुण्यों का अंत होते ही पाप की बारी आवेगी, तब देखना क्या तमाशा होता है, और ये भोगना पड़ेगा। कृतं कर्म शुभाशुभम अवश्य में वो भोगतव्यम, कृतं कर्म शुभाशुभ ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोण सतैरपि, जो अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अपना भाव कैसा है उस भाव के अनुसार आपको दंड भोगना पड़ेगा। आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई हो, वे अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जैसा दत्त भोगते सोई, जैसा जिया है उसके अनुसार भोगना पड़ेगा। तो अभी से सावधान रहो, जैसे खाने तक कुछ जोर से महाराज उल्टी होती तो नाक मकर निकलता है, मुंह से निकलता है, सभी खराब। इस तरह से बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते भाइयों सावधान रहो, सावचेत रहो। ये दूसरा दिखता है वो आपका ठीक है। बड़े बड़े जहाज होते हैं जलों में चलने वाले, समुद्रों में चलने वाले, उनके ऊपर देखा होगा आपने, छोटे से डूंड या डुग्गा ऐसा रहता है चलने की, छोटे छोटे नौकाएं। हमने देखा बड़े बड़े जहाज चलते हैं समुद्रों में, समुद्रों में चलते हैं, उनके ऊपर टंगे होते हैं छोटे छोटे डुगिया डूडिया, छोटे छोटे डूडिया। तो वे टंगे हुए जब आग लग जाए भीतर से और फूट जाए भीतर से, तो अच्छा अच्छा माल उन पर डालते हैं, उन छोटे छोटे डुगियों पर आदमी चले, आदमियों को उन पर डालते हैं। अरे जहाज डूब रहा है, जल्दी करो भाई, असली चीजें वो सैकड़ों डुगियों पर चाल देते हैं। वो छोटो से डाल दिया तो पार हो जाता है और उस जहाज में भरा हुआ डूब जाता है। तो ऐसे ही आपके घर में बहुत लाखों और करोड़ों रुपया है, बहुत भरा हुआ है, ऐसे फूट गया है, ये उम्र खत्म हो रही है, ये डूबने वाला है। उस जहाज में तो कुछ पता लगता है कि इतना छेद हुआ तो इतना मील जा सकता है, इसका पता नहीं कब डूब जाए, अचानक मारे निकाल अचानक चपेट की वो ये घड़ी की मैं राख की ढेरी, ऐसी हो जाएगी दशा। तो सावधान रहो, वो डूबता है। तो ऐसे समय में छोटे छोटे जो बेचारे गरीब है, आरक्षित है, अन्न नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, या छोटी छोटी डुगिया है छोटी छोटी, उन पर लाद दो, वो पार हो जाएगा, धन अन्न सभी माल पार हो जाएगा, और इसमें रहो तो डूब जाएगा समुद्र में, वो मिलने का फिर है नहीं। पर ये बात समझ में नहीं आती, हमारे भरा रहे खूब भरा रहेगा, ये भरा रहेगा तो छोड़ कर चलना पड़ेगा। दिया जग में चांदना दिया करो सबको, घर में धरा न पाइये जो कर दिया न हो। दिया जग में चांदना देना है वो प्रकाश है, दिया करो सबको, घर में धरा न पाइये जो कर दिया न हो। और दिया जग में चाना दीपक करो, दीपक दीपक दिया घर में चांदना, इस बार दिया करो सब जी, दीपक करो घर में उजाला हो जाए। दिया घर में चांदना दिया करो सबको, घर में धरा न पाए, घर में अंधेरे में पड़ा है, हाथ में दीवा नहीं हो तो घर में मिली हुई चीज नहीं मिलती, घर में पड़ी है चीज पर कर दिया न, हाथ में दीवा नहीं है क्या दिखेगा अंधेरे में। तो दिया जग में चांदना दिया करो सबको, घर में धरा न पाए जो कर दिया न हो। अपने दिया नहीं अथवा कर में दीपक न हो तो प्रकाश करो सज्जनों। परंतु आज तो ऊंची जीत हो रही है स्वार्थ की, स्वार्थ की कहावत तो यह है कि दीप दीपक तय अंधेरा, आज देखो दीपक का तय अंधेरा है, ऊपर अंधेरा है, दीवा की ऊंधा है, पहले तो ऊपर प्रकाश होता था नीचे अंधेरा रहता, आज ऊपर अंधेरा है, अगर जाने के लिए पढ़ लो कि अंधेरा नीचे प्रकाश हो जाए, नीचे 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 तो फिर खाना पीना से प्रकाश आनंद है आनंद, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तो भाइयों चेत करो, अभी चेत जाओ तो अच्छी चेत है, और नहीं तो ये चला जाएगा समय तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। समय चूकी पुनः का पछताने का वर्षा जब किसी सुखाने, समय बीत जाए अब क्या हो गए बोलो। इस वास्ते भाइयों बहनों अपना समय अपना अंतःकरण शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, बाहर की चाहे दरिद्रता भी हो जाए पर हृदय शुद्ध रहे निर्मल रहे तो मरने पर कोई धड़कन नहीं है, कोई धड़कन नहीं। जमराज की भी ताकत नहीं आपको दुख दे सके क्योंकि आपने कोई पाप नहीं किया, अन्याय नहीं किया, दूसरों का नुकसान नहीं किया है, भला किया है तो आपका अंतर्गत निर्मल हो जाएगा, अगर दूसरों का बुरा किया है तो बड़ी मुश्किल होगी मगर। अरे बाजी बोता है तो बाजी का सिट्टा आता है, ज्वार बोता है ज्वार का सिट्टा आता है, गेहूं बोता है तो जौ बोता है तो उसका भी पूरा का पूरा हाथ में आता है, इसमें तो काटते ही रहेगा भाई, ये बात। इस वास्ते हाथ का भी फर्क नहीं पड़ेगा, मनुष्य का फर्क कैसे पड़ेगा, जो किया है उसे भोगना पड़ेगा। कर्णी आप वो आप है, कौन बेटा कौन बाप है, कोई हो चाहे बेटा हो चाहे बाप हो, अपनी करनी का फल अपने को भोगना पड़ेगा। इस बार सावधान रहो, चेत करो, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, बड़ा बढ़िया चीज है, मौका है, अच्छा लग गया है हाथ, और ये चला जाएगा फिर कुछ नहीं होगा। सम्मिलने नए नए और नई चिंतित दृष्टि, ये नियंत्रण भूल जाएगा फिर कुछ नहीं है। दान होता है, लोग समझते हैं कि धनी आदमी दान पुण्य ज्यादा कर सकते हैं, हम गरीब क्या करें, हमारे पास में धन नहीं है। तो भाइयों बहनों के मन बहुत रहती है कि हम भी दान करें, हम भी ऐसा पुण्य करें, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। बड़ी अच्छी कृपा है जो पैसा नहीं है, भगवान की कृपा है, नहीं तो अभिमान आ जाएगा, कंजूस बन जाओगी, कृपण बन जाओ। धनी आदमी धन खर्च नहीं कर सकता, गरीब कर सकता है। साधुओं को भी हमने देखा, हमने तो वर्षों भिक्षा मांगी है, खाया है। तो धनी आदमी लाठी ले, आओ बाबा जी कहाँ जा रहे हो, नहीं भिक्षा जा रहे हो, नहीं ठीक है, गरीबों को ठेगा आगे में चले जाए, गड़े से झूपड़े आगे चले जाओ, रोटी दे दे सोचते, उनकी दया आती है, भाई क्या पता किस समय में दिया हुआ उग गया, ऐसी भावना रहती है। तो भिक्षा मिलती है वहाँ, बड़े बड़े घराने हैं, बड़े बड़े में जा नहीं सकता, हमारी बीती हुई है। देखिए एक मकान में चला गया मैं, तो वो दरवान वहां था नहीं, दरवाजे पर उसे भीतर चला गया, ऊपर चढ़ा तो ऊपर से आ रहा था, ऊपर आते हुए कहा जा रहे, अरे भैया गिर जाऊंगा, धक्का दे रहे, निकाल दे रहे, निकल यहाँ से, भाई कैसा आ गया, क्यों आ गया, अरे भूख लगी आ गया, ऐसी बात है। अरे गरीबों के घर पर मिलती रोटी भी मिल जाती है, उनके बंद नहीं होता, वही लाठी वाला है ही नहीं गाड़ी, वहां लाठी बैठे हुए भीतर में, बड़े बड़े टोपी लगाई, बढ़िया तो कोट पत्र में पहने वो तो जा सकते हैं, साधु नहीं जा सकता। कलकत्ते में आज जाकर देख लो, मैंने तो देखा कलकत्ते में रहा हूँ बरसों तक, मैंने देखा, मेरे को अनुभव है इस बात का, जा नहीं सकते, कैसे जा रहे, कहाँ जाते हो, भिक्षु जा नहीं सकता। तो वो सब दान पुण्य करते हैं सारे बड़े बड़े, कहाँ करते, नाम हो जाए बाबा, अखबार में नाम सब जा हो जाए, ये कीर्ति दान हो जाए, वाह वाह फूक में पड़ जाए, वो पुण्य सब फूक में गया बस, नहीं कर सकते। तो भाई गायों की यहाँ रक्षा करना है, गायों का आकार पड़ा हुआ है, तो 5 रुपया में 1 रुपया को दे देगा, 5 रुपया में 1 रुपया दे देगा सुगमता से, भाई ज्यादा मैं दे नहीं सकता, मेरे पास 1 रुपया दे देगा। तो 1 रुपया 5 में दे देगा तो 100 में कितना हो, 20 रुपया होता है, तो 100 रुपये जिसके पास में उसे 20 नहीं दिया जाएगा, और 1,00,000 रुपया हो तो 20,000 दे देगा, 1 रुपये पर 20,000 होते हैं उसके, अरे 1,00,000,000 रुपये होते हो तो 20,00,000 होते हैं, राम राम राम।